आरव और आयु की शादी की पहली रात काफी बुरी बीती थी, जहां गुस्से में आरव ने आयु के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। आरव से डरकर आयु बाथरूम में थी और रो रही थी। उसने आरव से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसके साथ बदतमीजी करेगा। आयु ने सुबकते हुए कहा, आई हेट यू आरव खुराना, मेरे साथ बदसलूकी करके तुम खुद को सही प्रूफ नहीं कर सकते। खुद को चोट लगी तो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। मैंने अपनी बहन को खोया, एक बार भी मेरे दर्द का एहसास नहीं तुम्हें। तुमने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि तुम अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हो, फिर कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं कि तुमने मेरी बहन को नहीं मारा होगा। उस रात मीटिंग में जरूर अनु ने कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसे टेरेस से धक्का दे दिया। अब जब तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार हो गया है और मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है, तब तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो सॉरी टू से, बट तुम इसी के लायक हो। तुमने मेरे साथ जो किया, मैं उसके लायक बिल्कुल नहीं हूँ। तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं पहुंचा सकते और ना ही मुझे तोड़ सकते हो। आयु वॉशरूम की दीवार के सहारे टिककर बैठी थी, सोचते हुए उसे वहीं उस हालत में नींद आ चुकी थी। दूसरी तरफ आयु से बहस होने के बाद आरव ऊपर अपने ऑफिस में पहुंचा। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। ऑफिस रूम में आते ही आरव गुस्से में चिल्लाकर बोला, आई स्वेयर मिसेस खुराना, जो किया है उसका सूद समेत मिलेगा। आई हेट जब कोई गिल्टी होने के बावजूद खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करता है। तुम भी वही कर रही हो, जस्ट लाइक छवि सिंघानिया। रही बात उस वीडियो की, तो उसका सच मैं पता लगा ही लूंगा। इस काम में जो भी तुम्हारे साथ है, उस हर एक शख्स को बर्बाद कर दूंगा, और शुरुआत तुमसे ही होगी। उसके बाद आरव वहीं काउच पर पसर गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह के लगभग 5 बजे के करीब आरव की आंख खुली। सोकर उठने के बाद उसका नशा काफी हद तक उतर चुका था, वैसे भी उसने ज्यादा नहीं पी थी। आरव ने उठकर इधर उधर देखा तो खुद को मीटिंग रूम में पाया। फिर उसे याद आया कि कल रात उसने आयु के साथ क्या किया था। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और वहां से अपने रूम में गया। उसने इधर उधर देखा, आयु उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उसकी नजर बाथरूम पर गई। आरव ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखकर कहा, जल्दी उठने की आदत तो नहीं होगी इसे, तो क्या पूरी रात से ये बाथरूम में ही है? सोचते हुए आरव ने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाए। बाथरूम का दरवाजा बंद जरूर था, लेकिन अंदर से लॉक नहीं था। आरव ने दरवाजा खोला तो आयु एक दीवार के सहारे टिककर सोई हुई थी। उसने अभी भी खुद को चादर में लपेट रखा था और अंदर कुछ नहीं पहना था। आयु को उस हाल में देखकर आरव की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, नहीं करना चाहता तुम्हें हर्ट, और ना ही तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती अपनाना चाहता हूँ। तुमने जो किया उसके बाद चाहकर भी दिल तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा, और मुझे नहीं पता अपने इस गुस्से में मैं तुम्हारे साथ और कितना बुरा सलूक करने वाला हूँ। आरव ने अपने कदम आयु की तरफ बढ़ाए और उसे अपनी गोद में उठा दिया। आयु गहरी नींद में थी, इसलिए उसकी नींद नहीं टूटी। आरव ने लाकर उसे बेड पर लेटाया। आयु को ठंड ना लगे, इसलिए आरव ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। फिर वहां से जाते वक्त उसकी नज़र आयु के चेहरे पर पड़ी, जिस पर आंसुओं के निशान बन चुके थे। आरव ने आयु के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से कहा, अब इन आंसुओं की आदत डाल दो तुम। एक वक्त था जब मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी लाकर दूंगा। क्या पता था कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार कर रही हूँ जो मुझे बर्बाद करना चाहती हैं। अब तक तुमने आरव खुराना का प्यार देखा है मिसेस खुराना, लेकिन अब उसकी नफरत और जिद देखोगी। जिंदगी भी क्या रंग दिखा देती है। कभी सोचा नहीं था छवि सिंघानिया के अलावा मेरा ये रूप कोई और देखेगा, पर देख भी कौन रहा है, वो लड़की जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। आरव अच्छे से जानता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, पर आयु के धोखे के बाद उसे माफ करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। आयु को कुछ देर देखने के बाद आरव वापस ऑफिस रूम में चला गया। सुबह के लगभग 7 बजे के करीब आयु की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। आयु ने देखा वो ब्लैंकेट से कवर है और वो अभी भी चद्दर में लिपटी है। जब इतनी ही नफरत है तो ये सब करने की क्या जरूरत है आरव खुराना? कौन सा कल रात के बाद तुम मुझे वापस तकलीफ नहीं पहुंचाओगे? आयु ने बुझी आवाज में कहा। उनकी शादी पहले दिन से ही ऐसी होगी, ये तो आयु ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आयु बिस्तर से उठी और अपने लगेज से कपड़े निकाले। कुछ ही देर में वो तैयार हो चुकी थी। तैयार होने के बाद उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। डेविन पैंट्स के ऊपर पिंक स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी, जिसके फ्रंट में एक लंबा स्लिट था। फिर आयु की नज़र बेड पर रखी साड़ी और ज्वेलरी पर गई तो उसने भरी आवाज में कहा, भाभी ने कहा था शादी के नेक्स्ट डे साड़ी पहनना, पर किसके लिए ये एफर्ट्स? उसे तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, आयु ने बुझी आवाज में कहा। फिर आयु ने अपना मोबाइल उठाया और अयान के लिए वॉइस नोट छोड़ा। अयान, मैं हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ, वो भी आज से ही। मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं करना, आई वॉन्ट फुल 10 आवर्स ड्यूटी। आरव से दूर रहने के लिए आयु ने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के बारे में सोचा।
आयु बाहर आई तब तक सुबह के 8:30 हो चुके थे और सब ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। आयु के कानों में गौरवी जी की आवाज पड़ी। वो आरव से कह रही थी, सुबह सुबह मुंह क्यों फुला रखा है तुमने और अकेले उठकर आए हो, अपनी वाइफ को भी उठा देते, वो भी टाइम से ब्रेकफास्ट कर लेती। आरव ने जवाब में कहा, कल का दिन काफी हेक्टिक था इसलिए थक गई है वो, उसे उठने में टाइम लगेगा दादी, उसके उठने के बाद आपको उसकी जैसे खातिरदारी करनी है कर लेना। गौरवी जी और आरव आपस में बात कर रहे थे तभी कबीर की नजर आयु पर पड़ी। उसने आयु की तरफ देखते हुए कहा, मैम उठ गई है, वो इधर ही आ रही हैं। चलो अच्छा है वो आ गई, इसी बहाने मुझे जो कहना है वो सबके सामने कह सकती हूँ। गौरवी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर वो आयु के लिए उठी। आयु के वहां आने से आरव अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और उठते हुए कहा, चलते हैं कबीर, वैसे भी काफी टाइम वेस्ट हो गया शादी के चक्कर में, ऑफिस देखना होगा, शायद अब तो देर रात तक वहां रुककर काम करना पड़े। आरव ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि उसे रात को घर ना आना पड़े। आरव वहां से कहीं जाता उससे पहले गौरवी जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बैठाते हुए कहा, मैंने कहा ना बात करनी है, चुपचाप बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती आरव को वापस बैठा दिया। आयु ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुकी थी। उसने आते ही गौरवी जी के पैर छुए और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। गौरवी जी ने उसे आरव के पास वाली चेयर पर बैठाते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही जल्दी से तैयार होकर आ गई। तैयार हुई हो, कहीं जा रही हो क्या तुम? बोलते हुए गौरवी जी ने आयु को ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ दादी, मैंने फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है, बस वही जा रही थी, आयु ने धीमी आवाज में जवाब दिया। बात करते हुए उसने एक बार भी आरव की तरफ नहीं देखा, तो वहीं उसकी बात सुनकर आरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची।
उसके इस डिसीजन से गौरवी जी बिल्कुल खुश नहीं हुई। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अरे ये क्या बात हुई, शादी के अगले दिन ही तुम हॉस्पिटल ज्वाइन करने का सोच रही हो? अभी तो तुम दोनों के एंजॉय करने के दिन है, मुझे लगा तुम दोनों ने अपनी हनीमून की टिकट बुक कर ली होगी, लेकिन तुम दोनों का तो अलग ही हाल है, एक ऑफिस जाने का प्लान कर रहा है तो दूसरी हॉस्पिटल, कहीं नहीं जाना, पहले तुम दोनों हनीमून के लिए बाहर घूमने के लिए जाओगे, उसके बाद ही हॉस्पिटल ज्वाइन करना। बोलते हुए गौरवी जी ने आरव की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों की शादी तुम्हारे हिसाब से हुई, बिल्कुल सिंपल तरीके से, पर मैं चाहती हूँ कि रिसेप्शन ग्रैंड हो। अरे सबको पता भी तो चलना चाहिए, आरव खुराना की शादी हो गई है और मेरी किटी के फ्रेंड्स, रिश्तेदार सबको भी तो बुलाना है। गौरवी जी के मुंह से हनीमून का नाम सुनकर आयु ने अपनी नजरें झुका ली। कल रात जो भी हुआ वो सब आयु को याद आया तो उसकी आंखें नम हो गईं। आरव ने गौरवी जी की बात के जवाब में कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा और आपको बाद में जवाब दूंगा, अभी मुझे ऑफिस जाना है, चलें कबीर? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और आरव से पहले बाहर चला गया। आरव भी उसके पीछे आ रहा था। कबीर ने नोटिस किया कि आरव और आयु दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, तो वहीं आयु की इग्नोरेंस देखकर आरव को भी गुस्सा आ रहा था। हद हो गई है यार, गलती खुद कर रही है और गुस्सा मुझे दिखा रही है, किस बात का एटीट्यूड है इस लड़की में जो मुझसे नाराज होकर बैठी है? आई टेल यू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हें भारी पड़ेगा मिसेस खुराना, बड़बड़ाते हुए आरव गाड़ी की तरफ बढ़ा। वहीं कबीर उसके आने का इंतजार कर रहा था। कबीर के आते ही कबीर ने कहा, देखिए सर, आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए पर आप जानते हैं कि आपके दिल में जो चल रहा है वो मुझे बिना कहे ही पता चल जाता है। क्या चल रहा है आपके और मैम के बीच में? कुछ भी ठीक नहीं है ये मैं महसूस कर सकता हूँ, आप खुद बता दीजिए, वरना आप भी अच्छे से जानते हैं कि सच पता लगाने के मेरे पास और भी तरीके हैं, और अगर मैंने अपने तरीके से सच पता लगाया तो शायद आपकी वाइफ को तकलीफ हो सकती है। बोलते हुए कबीर का लहजा सख्त था। वो माफिया के लिए काम करता था तो उसकी धमकियां कोरी नहीं होती थीं। आरव और गौरवी जी उसके सॉफ्ट कॉर्नर थे, उनको कोई तकलीफ देता तो उसे सहन नहीं होता था। कबीर समझ रहा था कि आरव जरूर आयु की वजह से ही अपसेट है और ऐसे में वो आयु को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटने वाला था। ऐसे में ना चाहते हुए भी आरव कबीर से कुछ छुपा नहीं सकता था।